नंदिनी ने इप्सिता को चिढ़ाते हुए उसके ही अंदाज में कहा, हम हमेशा ही ठीक कहते हैं और तुम्हारी तरह एक्स्ट्रा सोचते भी नहीं। तुम भी हमारी तरह ही रहा करो, कुछ तो सीखो। उसके ऐसा करने पर इप्सिता ने गुस्से में घूर कर उसकी तरफ देखा और कहा, नंदिनी की बच्ची, हमें चिढ़ा रही हो ना तुम, तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। इतना बोलकर इप्सिता आगे आई और उसने बेड पर पड़ा हुआ तकिया उठा लिया। नंदिनी तुरंत ही बेड की दूसरी साइड से उतर गई और अपने चेहरे के सामने हाथ करते हुए बोली, अरे मैं बस मजाक कर रही थी यार, क्या तू भी सीरियस हो जाती है? मुझे भी पता है तुम मेरी तरह कभी नहीं बन सकती, तू ऐसी ही अच्छी है, मेरी बेस्टी वर्ल्ड बेस्ट है। इतना बोलते हुए उसने इप्सिता को रोकने की कोशिश की। इप्सिता ने वो तकिया जानबूझकर उसके साइड में फेंक दिया और फिर वो बेड पर बैठ गई और बोली, अच्छा ठीक है, चलो सो जाओ। वैसे भी हम नाराज़ नहीं हैं तुमसे, क्योंकि तुम और तुम्हारी फालतू बातों की वजह से ही तो हम थोड़ा सा खुश रहते हैं। इप्सिता को आराम से बैठते देख नंदिनी ने चैन की सांस ली। फिर उसके पीछे आकर बैठते हुए नंदिनी ने इप्सिता के कंधे पर हाथ रखा और उसे बैक हक करते हुए बोली, अरे अभी तुम थोड़ा खुश रहती हो ना, देखना जीजू से शादी होने के बाद उनकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा खुश रहोगी। नंदिनी की ये बात सुनकर इप्सिता उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराई और फिर वो दोनों ही अपनी जगह पर लेट गईं। वहां अभिमन्यु ने अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, इप्सिता को क्या हो गया? उन्होंने अचानक से इस तरह से कॉल डिस्कनेक्ट क्यों कर दिया? हो सकता है कोई आ गया हो, और वैसे भी वो थकी होगी, उन्हें रेस्ट करने देते हैं, बात तो हमसे बाद में भी कर लेंगे। अभिमन्यु भी इतना सोचकर चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। अगले दिन सुबह इप्सिता और नंदिनी दोनों काफ़ी गहरी नींद में सो रही थीं। तभी इप्सिता की माँ उसके बेडरूम में आई और उन्होंने इप्सिता को उठाते हुए कहा, इप्सिता उठिए। इप्सिता अपनी माँ की आवाज़ सुनकर अपनी आँखें मलते हुए बोली, क्या हुआ मॉम, आप इतनी सुबह सुबह हमारे रूम में क्या कर रही हैं? इप्सिता की माँ ने कहा, सबसे पहली बात तो सुबह हुए काफ़ी समय बीत गया है, उठिए और घड़ी की तरफ नज़र डालिए, 10 बजने वाले हैं, कितनी देर तक सोएंगी आप? इप्सिता अपनी माँ की बात सुनकर बोली, 10 बजने वाले हैं, हम इतनी देर तक सोते रहे? इप्सिता ने खुद से ही यह सवाल किया। इप्सिता की माँ ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया और वो अपनी आँखें घुमाते हुए बोली, चलो अब इतना शोक करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में रानी साहब से मिलने आने वाली हैं। इप्सिता उनकी बात सुनकर थोड़ी सी कन्फ्यूज़ होते हुए बोली, लेकिन क्यों मम्मी, किस लिए? इप्सिता की माँ ने इप्सिता को बोलते हुए देखकर कहा, हमसे ज़्यादा सवाल जवाब मत करिए इप्सिता, फटाफट आप रेडी हो जाइए, वो किसी भी समय यहाँ पहुँच सकती हैं, और हमें रीज़न नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आ रही हैं। उन्होंने हमसे फ़ोन करके इतना कहा कि वो आपसे मिलना चाहती हैं, इसलिए हम आपको जगाने के लिए आई हैं, अब ज़्यादा देर मत करिएगा और फटाफट रेडी होकर नीचे आ जाइए। इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया और वो चुपचाप फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। इप्सिता की माँ सीधे उसके रूम से बाहर निकल गई। इप्सिता थोड़ी देर में रेडी हुई और वो नंदिनी के साथ नीचे डाइनिंग हॉल में आकर बैठी। वो ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। तभी नंदिनी ने इप्सिता के कान के पास आकर धीमी आवाज़ में कहा, मुझे शॉपिंग पर जाना है ईशु, इसलिए तू अपनी मम्मी पापा से परमिशन ले ले, वरना अगर उन्होंने तुझे नहीं जाने दिया तो फिर मुझे अकेले शॉपिंग करनी पड़ेगी। इप्सिता नंदिनी की ये बात सुनकर अपनी पलकें झपकते हुए अपने पापा और मम्मी की तरफ देखने लगी। तभी इप्सिता के पापा ने उसे पूछा, क्या बात है इप्सिता, आपको हमसे कुछ कहना है क्या? इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पापा, एक्चुअली नंदिनी को शादी की कुछ शॉपिंग करनी थी, तो क्या हम उसके साथ मॉल जा सकते हैं? उदय उन दोनों की तरफ देखने लगा। तभी इप्सिता की माँ ने कहा, नहीं अभी आप कहीं नहीं जाओगी, जब तक रानीसा यहाँ आकर आपसे मिलकर नहीं चली जाती तब तक आपको यहीं रहना है, हम नहीं चाहते वो यहाँ पर आपसे मिलने आए और आप ही यहाँ घर पर ना रहो, सोचो उन्हें कैसा लगेगा। इप्सिता अपनी माँ की तरफ हैरानी से देखने लगी। तभी इप्सिता की माँ ने कहा, आप अभी मत जाइए, लेकिन हाँ जब आपकी होने वाली सास आपसे मिलकर चली जाएगी तब आप शॉपिंग के लिए जा सकती हैं, मैं संजय के साथ जा रही हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर इप्सिता बिल्कुल चुप हो गई। तभी इप्सिता के पापा ने कहा, कोई बात नहीं उदय, नंदिनी को लेकर शॉपिंग पर चले जाना। उदय ने जैसे ही ये बात सुनी उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आई। वो अपने डैड की तरफ देखकर थोड़ा कन्फ्यूज होकर बोला, लेकिन डैड आज ऑफिस में मेरी एक मीटिंग है। उदय की ये बात सुनकर इप्सिता के पापा ने कहा, कोई बात नहीं वो मीटिंग हम हैंडल कर लेंगे, आप इन दोनों को शॉपिंग पर लेकर चले जाइए। उदय ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिला दिया। इप्सिता और नंदिनी ब्रेकफास्ट कर ही रही थी। तभी नंदिनी ने कहा, ईशु तो मुझे यहाँ के सबसे अच्छे मॉल में ले चलना, जहाँ पर सबसे ज्यादा डिजाइनर लहंगे मिलते हों, क्योंकि मुझे तेरी बारात में सबसे अच्छा लहंगा पहनना है। मैं चाहती हूँ कि तेरे ससुराल की तरफ से जितने भी लोग आए वे सब तुझे देखने के बाद मेरी भी तारीफ करें। इप्सिता उसकी ये बात सुनकर धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, क्यों ऐसा क्यों कह रही हो तुम, मतलब तुम्हें हमारे ससुराल वालों की अटेंशन चाहिए? नंदिनी ने इप्सिता की बात सुनकर धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं तुम्हारे ससुराल वालों की अटेंशन किसे चाहिए, हमें तो बस चीजू के उस हैंडसम दोस्त की अटेंशन चाहिए ताकि मैं भी तेरी तरह सेटल हो सकूं और आराम से अपनी लाइफ बिता पाऊं। इप्सिता नंदिनी की बात सुनकर उसके कंधे पर मारते हुए बोली, सच में तुम बिल्कुल पागल हो। उन दोनों को इस तरह हंसते मुस्कुराते बात करते देखकर उदय भी उन दोनों की ही तरह मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा था कि वे दोनों सहेलियां आपस में क्या बातें कर रही थीं। काफी देर हो गई थी, अभी तक अभिमन्यु की माँ वहां नहीं पहुंची थी। इप्सिता ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अब तो दोपहर के 2 बजने वाले हैं, अभी तक अभिमन्यु की माँ आई क्यों नहीं? नंदिनी ने जैसे ही इप्सिता की ये बात सुनी, उसने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, अपनी सास की बड़ी याद आ रही है तुम्हें? अभी से तुम तो पूरी राजवंशी परिवार की फिक्र करने लगी हो, और अपनी सासू माँ की तो कुछ ज्यादा ही। नंदिनी की बात सुनकर इप्सिता उसे घूरते हुए देखने लगी, तभी उसने उसे डांटते हुए कहा, जस्ट शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस ये कह रहे थे कि। इप्सिता बोल ही रही थी कि तभी नंदिनी ने कहा, हाँ हाँ बोलो बोलो, बना लो कोई बहाना, लेकिन मैं तुम्हारे बहाने बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। अब तो धीरे धीरे तुम पूरी तरह से राजवंशी होती जा रही हो, चलो वैसे अच्छी बात है, शादी में अब वैसे भी ज्यादा समय नहीं बचा है, अब तो तुम्हें धीरे धीरे ये आदत डाल ही लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो तुम बहुत जल्द एक इप्सिता सूर्यवंशी से इप्सिता अभिमन्यु राजवंशी हो जाओगी। इप्सिता नंदिनी की ये बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगी, उसे अपने नाम के साथ अभिमन्यु का नाम जुड़ते सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा था। उसने अपने मन में कहा, हमें अपनी शादी की बात सोचकर इतनी खुशी क्यों हो रही है? इप्सिता ये सोच ही रही थी कि नंदिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ, फिर से जीजू के ख्यालों में खो गई क्या? इप्सिता उसकी बात सुनकर हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, हम तो किसी के ख्यालों में नहीं खोई हैं, तुम फालतू की बातें मत किया करो, वैसे भी हम तो सिर्फ इसलिए ये बात बोल रहे थे कि जितनी देर उन्हें यहाँ आने में लगेगी हम उतनी देर से शॉपिंग के लिए जा पाएंगे, और तुम हो कि मुझे परेशान करने में लगी हो। नंदिनी इप्सिता को साइड हाँक करते हुए बोली, अरे बाबा ठीक है, अच्छा नहीं करती मैं तुझे परेशान।
नंदिनी और इप्सिता वहीं हॉल में ही बैठकर ये सारी बातें कर रही थीं, तभी इप्सिता के फोन पर मैसेज नोटिफिकेशन की आवाज आई। जैसे ही इप्सिता ने अपना मोबाइल फोन उठाया, उसने देखा अभिमन्यु का नाम स्क्रीन पर पॉप हो रहा था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल फोन अनलॉक किया और अभिमन्यु का मैसेज चेक करने लगी। उसने मैसेज पढ़ा, उसमें अभिमन्यु ने लिखा था, इप्सिता क्या मासा वहां पहुंच गई? इप्सिता ने धीरे से अभिमन्यु के मैसेज का रिप्लाई करते हुए कहा, नहीं अभी तक तो आपकी मासा नहीं आई है यहाँ। अभिमन्यु ने कहा, थोड़ी देर में वो पहुंचती ही होगी। इप्सिता अभिमन्यु का मैसेज देखकर तुरंत उसे रिप्लाई करते हुए बोली, वैसे अभिमन्यु हमें एक बात बताइए, मासा इस समय सिर्फ हमसे मिलने आ रही हैं या फिर कोई और बात भी है? अभिमन्यु ने कहा, है कुछ तो बात है, वो हम आपको नहीं बताएंगे, वो मासा जब वहां पहुंचेंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इप्सिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर थोड़ी सी सोच में पड़ गई। तभी नंदिनी ने उसके फोन में झांकते हुए कहा, किसे टेक्स्ट कर रही है तू? इप्सिता ने फोन नीचे करते हुए कहा, किसी को नहीं। नंदिनी ने इप्सिता को घूरते हुए देखकर कहा, मैं सब जानती हूँ तेरी बातें, जीजू से बात कर रही है ना तू, बोल। इप्सिता नंदिनी से अपनी नज़र चुराने लगी। तभी नंदिनी ने इप्सिता को टिकल करते हुए कहा, बोलो बोलो सच सच बताओ, दिखाओ दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, क्या बात कर रही हो तुम जीजू से? नंदिनी सारी बातें बोलते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थीं। तभी इप्सिता की माँ और डैड बाहर आकर बैठे। नंदिनी उन्हें देखकर बिल्कुल शांत हो गई। इप्सिता के माँ डैड शादी को लेकर ही कोई बात कर रहे थे। इप्सिता उनकी बातें सुनकर उठकर खड़ी हुई और अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी उनके घर का एक नौकर भागते हुए इप्सिता की मम्मी और पापा के सामने आकर अपना सर झुकाते हुए कहा, सर वो रानीसा की गाड़ियां गेट पर आकर रुक गई हैं। जैसे ही इप्सिता ने ये बात सुनी, वो वहीं रुक गई। इप्सिता की माँ जल्दी से उठकर खड़ी होते हुए बोली, रानीसा आ गई, कोई बात नहीं, हम अभी जाकर उनका वेलकम करते हैं। इप्सिता हैरानी से अपनी माँ की तरफ देख रही थी। अभिमन्यु की माँ सीधे उनके हॉल में आकर रुकी। इप्सिता की माँ उनके पास गई और उन्हें अंदर की तरफ लेकर आईं। तभी अभिमन्यु की माँ ने एक बड़ी सी थाल के ऊपर से लाल रंग का बड़ा शाही कपड़ा हटाया। वो थाल सीधे उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, सुहासिनी जी ये लीजिए, हमारे यहाँ शादी का कार्ड सबसे पहले समधी जी को ही दिया जाता है, इसलिए हम यहाँ आपको अभिमन्यु और इप्सिता की शादी का कार्ड देने आए हैं। इप्सिता उनकी ये बात सुनकर चुपचाप अपनी माँ के पीछे आकर खड़ी हो गई। तभी रानीसा की नज़र इप्सिता पर गई। उन्होंने आगे बढ़कर इप्सिता का हाथ पकड़ा और उसे अपने बगल में बैठाते हुए कहा, कैसी हैं आप इप्सिता? इप्सिता ने धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ आंटी। अभिमन्यु की माँ ने कहा, हम आपसे मिलना चाह रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि आज का दिन काफी अच्छा है और आज हम आपसे मिलने आ ही गए, क्योंकि अब शादी में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो हमने सोचा क्यों ना अब आपको राजवंशी राज परिवार की बहू के नाम से ही बुलाया जाए। इप्सिता काफी ज्यादा कन्फ्यूज लग रही थी, उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उनका ये सब बोलने का क्या मतलब है। क्रमशः, क्या लगता है आप लोगों को, क्यों आई हैं अभिमन्यु की माँ यहाँ पर इप्सिता से मिलने? उन्हें शादी से कुछ दिनों पहले ऐसा क्या काम हो सकता है, और क्या इप्सिता ने अब पूरे मन से एक्सेप्ट कर लिया है अपनी होने वाली इस शादी को? और वहीं दूसरी तरफ आखिर क्या चल रहा है हमारे होने वाले दूल्हे राजा के मन में, मतलब अभिमन्यु क्या सोच रहा है, आपको क्या लगता है और शादी से पहले ये दोनों मिलेंगे क्या एक और बार?